بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام راہ زندگی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اور ناظرین، اسی طریقے سے آنے والی تاریخ یعنی عید قربان کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، خداوند عالم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی عبادتوں اور اطاعتوں کو قبول فرمائے، اور اسی طریقے سے جو حج بیت اللہ کے لیے گئے ہوئے ہیں اور تمام حجاج کرام کو خداوند عالم حفظ و امان کے ساتھ ان کے وطن واپس پلٹائے، اور تمام مسلمانوں کو اور ہمیں بھی ساتھ میں انشاءاللہ حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس شرف سے ہمیں نوازے۔ ناظرین، پروگرام راہ زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہے، پورے ہفتے آپ جس کا انتظار کرتے ہیں۔ اس میں ہم اسلامی احکام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تو کوئی بھی اگر سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ہمیں فوراً ریکارڈ کر کے اگر واٹس اپ کے ذریعے بھیجیں تو فوراً آپ کے سوال کو لیا جائے گا۔ بہت سے ناظرین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سوال کا جواب رہ گیا ہے، پھر وہ واپس لکھتے ہیں، لیکن معذرت چاہتے ہیں ہم آپ سے، اس لیے ہم کبھی کبھی سوال نہیں لے پاتے آپ کا، چونکہ یا تو ہمارے لیے وہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، یا دوسری مشکلات ہوتی ہیں، یا ٹائم کم ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب فوراً دیا جائے تو آپ ریکارڈ کر کے واٹس اپ پر، ہمارا نمبر آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے، اس پر بھیج دیجئے، انشاءاللہ سب سے پہلے یعنی جیسے ہی ہمارے پاس وہ سوال پہنچے گا اس کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، تو ہمارے ساتھ رہیے، قبلہ سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اسٹوڈیو تشریف لائے۔
میں سب سے پہلے خداوند متعال کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس بندہ ناچیز کو بیان احکام کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے لوگوں کے لیے بیان احکام کے زمینے کو فراہم کیا، اور اسی طریقے سے میں اپنے تمام ناظرین اکرام کا شکر گزار ہوں کہ وہ غور سے اس پروگرام کو سنتے ہیں اور اپنے سوالوں کے ذریعے اس بات کا سبب بنتے ہیں کہ احکام الہی دوسرے افراد تک منتقل ہوں۔
جی بالکل، اور حضور عید قربان کے حوالے سے بھی ہم آپ کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں،
اور اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں بھی اور تمام ناظرین اکرام کی خدمت میں عید قربان کی تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔
جی بہت شکریہ۔ حضور، ہماری گفتگو جو آج بھی ہوگی انشاءاللہ تو نمازی کے لباس کے حوالے سے ہوگی، نہیں معاف کیجیے گا، نمازی کی جگہ جہاں پر وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے، نمازی اس کی جگہ کو کیسا ہونا چاہیے، تو اس کے بہت سے شرائط تھے، اس میں سے یہ بھی تھا کہ جہاں پر وہ نماز ادا کر رہا ہے تو وہاں پر کوئی ایسی نجاست نہیں ہونی چاہیے کہ جو اس کے لباس تک پہنچ جائے یا اس کے بدن تک پہنچ جائے، تو اس شرط کے اوپر آپ مختصر سی روشنی ڈالیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ مکان نماز گزار یعنی وہ جگہ جہاں انسان نماز پڑھ رہا ہے، اس کی 7 عدد شرطوں کا تذکرہ ہم نے کیا۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس جگہ انسان نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک و پاکیزہ ہو، بنا پر احتیاط مستحب، جہاں پاس انسان کا اعضائے سبعہ، یہ 7 اعضاء جو ہوتے ہیں، وہ ٹک رہے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں بنا پر احتیاط مستحب پاک ہونا چاہیے۔ لیکن اگر خشک نجاست ہے، مثلا بچے نے پیشاب کیا
اور وہ خشک ہو چکا
ہے اور ہمارا ہاتھ بھی سوکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ پیشانی کے علاوہ اگر دوسری جگہ پہ نجاست ہے اور نجاست انسان کے جسم اور لباس تک سرایت نہیں کر رہی ہے، تو اس صورت میں اس نجاست پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں کوئی اشکال اور کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان کی پیشانی کی جگہ نجس ہے،
جہاں پر وہ سجدہ کرنا
جہاں سجدہ کر رہا ہے، تو چاہے وہ نجاست سوکھی ہوئی کیوں نہ ہو، سجدگاہ تھا یا کوئی لکڑی تھی، بچے نے پیشاب کر دیا، وہ پیشاب بھی خشک ہو گیا، اس پہ اگر ہم سجدہ کرنا چاہیں تو ہماری نماز باطل ہوگی۔ تو نجاست اگر سوکھی ہوئی ہے پیشانی کے علاوہ تو معاف ہے، लेकिन कभी ऐसा है कि इंसान का हाथ गीला है, या मसलन नजासत सही से खुश्क नहीं हुई,
जी
और जानता है इंसान अगर हमने हाथ को रखा तो हमारा हाथ नजीस हो जाएगा,
जी
इस सूरत में नमाज पढ़ना इसी जगह पे नाजायज है, और नमाज अगर इंसान ने पढ़ ली
जी
तो ये नमाज भी इसकी बातिल शुमार होगी।
सही हुजूर, मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपसे इसी हवाले से है, यानी नमाजी की जगह के हवाले से। बहुत से इस तरह के मवारिस सामने आते हैं, ख़ास तौर पर जब किसी इज्तिमाई जगह पर कोई इंसान जाता है, हरम वगैरह जाता है, तो वहाँ नमाज का मसला होता है। यानी एक शर्त थी उसमें कि खातून, कोई औरत नमाजी से आगे ना हो जो नमाज अदा कर रही हो, तो इसमें आप बता सकते हैं कि कितना आगे ना हो या कोई चीज़ फासला हो सके, तो किस तरह से एक नमाजी की नमाज सही है, चूँकि कभी कभी ख्वातीन भी नमाज पढ़ती हैं, मर्द भी मजबूर है कि वहाँ पर नमाज अदा करें। जी
देखिए, मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूँ कि उन सात शर्तों में
जी
एक शर्त ये थी कि औरत मर्द के आगे ना हो।
जी
इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह
जी
ये फरमाते हैं कि बिनाबर एहतियात मुस्तहब,
सही,
औरत मर्द के आगे ना हो।
जी
अगर कोई इंसान इनका मुकल्लिद है
जी
और इस सूरत में औरत आगे है मर्द पीछे है
जी
तो कोई हरज नहीं है।
अलबत्ता
हरज नहीं है, यानी मुस्तहब है कि इंसान नमाज की तकरार करे।
जी
लेकिन रहबर इनकलाब इस्लामी
जी
वो फरमाते हैं कि हद अकल यानी कम से कम
जी
एक बालिश तक का फासला मर्द और औरत में होना चाहिए, अगर औरत आगे है
जी
मर्द पीछे है।
यानी दोनों की नमाज पढ़ने की जगह में या सजदे की जगह में और उसके कयाम की जगह में?
असल जो है देखिए, दोनों का फासला जो है मतलब मसावात बराबर से खड़े हुए हैं,
सही,
यहाँ पास एक बालिश्त का फासला जरूरी है
जी,
और अगर औरत आगे है मर्द पीछे है
जी,
तो सजदे की जगह
और उसके
और
होने
मर्द
की जगह,
के पैर की जगह में
जी
हद अकल एक बालिश्त का फासला,
नहीं, आगे खातून है
जी, औरत के
खड़े होने की जगह और मर्द के सजदे की जगह जी
पर एक बालिश्त का फासला होना लाजिमी है,
सही,
बिनाबर एहतियात लाजिम।
मैं यहाँ पर आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि ये खातून महरम हो या ना महरम भी, अगर
कोई फर्क नहीं करता
जी,
चाहे महरम हो चाहे ना महरम।
सही,
अलबत्ता कौल मशहूर की बिना पर
जी
और आयतुल्लाह अल-उज़्मा आगा सिस्तानी की नजर में अगर औरत मर्द के आगे है
जी
तो 10 हाथ से ज्यादा फासला होना चाहिए,
10 हाथ से ज्यादा फासला होना चाहिए।
अगर 10 हाथ से थोड़ा सा भी कम फासला है
जी
और दोनों ने एक साथ नमाज शुरू की, दोनों की नमाज बातिल शुमार होगी।
सिस्तानी साहब का नजरिया
जी, आगा सिस्तानी का नजरिया, कौल मशहूर का नजरिया भी यही है।
सही, बिल्कुल
10 हाथ से ज्यादा का फासला होना चाहिए
जी।
और एक चीज और मैं अर्ज करूं कि ये उस सूरत में है जब मर्द और औरत के दरमियान कोई चीज हायल ना हो,
पर्दा वगैरह,
पर्दा ना हो, दीवार ना हो, खंबा ना हो, पिलर वगैरह, लेकिन अगर कोई चीज हायल है तो इस सूरत में अगर फासला इतना ना हो 10 हाथ का तब भी कोई हरज नहीं है।
हाँ, चूंकि दरमियान में एक चीज माने बन रही है,
तो खुलासे कलाम ये हुआ कि इमाम खुमैनी के नजदीक जो उनके मुकल्लिद हैं वो फरमाते हैं कि फासला अगर ना भी हो तो कोई हरज नहीं है। रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्ला खामनाई फरमाते हैं कि हद अकल एक बालिश्त का फासला जनो मर्द में होना चाहिए। आयतुल्लाह अल-उज़्मा आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि 10 हाथ से ज्यादा फासला होना चाहिए, अगर 10 हाथ से कम फासला है
तो दोनों,
दोनों ने एक साथ नमाज शुरू किया है
जी,
तो दोनों की नमाज बातिल हो जाएगी।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हुजूर, सवालात का एक सिलसिला है, आप हमें इजाजत दीजिए, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं नाज़रीन के सवालात क्या है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपसे गुजारिश करेंगे इंशाल्लाह हर प्रोग्राम की तरह आप इस प्रोग्राम में भी हमारे साथ आखिर तक रहेंगे, और कोई भी सवाल हो तो बराए करम आप हमें भेजिए ताकि हम उसका जवाब पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें और उसमें अजर के मुस्तहक आप भी बराबर के हों, इसलिए कि आप सवाल करेंगे तो वो सवाल सबब बनेगा कि पूरी दुनिया उसके जवाब से आशना होगी। तो हमारे साथ रहिए, मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन इकराम, वक्फे के बाद फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है, आप हमारे साथ रहिए, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं और जो आपके सवालात हैं उनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो हुजूर इजाज़त दीजिए, हम रिकॉर्डेड सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं।
खिदमत में हाजिर हैं
जी नाज़रीन, तो सबसे पहला जो आज का सवाल है वो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है।
حضور، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں اکثر نماز کسی بھی مسجد میں وقت پر پڑھ لیتا ہوں یا وقت سے تھوڑا آگے پیچھے ہو کے پڑھ لیتا ہوں، مگر مجھے ہر جگہ سجدگاہ میسر نہیں ہوتی ہے، تو میں اسی کارپیٹ پہ ہی سجدہ کر لیتا ہوں جو مسجد میں بچھا ہوتا ہے، کیا یہ اہل تشیع کے فرقے کے مطابق درست ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو مجھے ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
جی بالکل حضور، یہ سوال چونکہ ریکارڈڈ سوالات تھے، اس کا پہلا حصہ پہلے پروگرام میں نشر ہو چکا تھا گزشتہ ہفتے، اور اس کے اوپر بھی مختصر گفتگو کی گئی تھی، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ تو آپ کی خدمت میں ہیں، لیکن آپ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔
دیکھیے، میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری فقہ میں
جی
وہ چیزیں جو کھائی اور پہنی جاتی ہیں یا جن کا شمار معدنیات میں ہوتا ہے، سونا چاندی وغیرہ، ان چیزوں پہ سجدہ جائز نہیں ہے۔
صحیح۔
اور توضیح کے لیے میں ایک جملہ اور کہوں، کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر ان چیزوں پہ سجدہ جائز ہوتا، جو چیز کھائی جاتی ہے مثلا روٹی پہ سجدہ جائز ہوتا، یا جو چیز پہنی جاتی ہے لباس وغیرہ، ان پہ سجدہ جائز ہوتا، تو لوگ اللہ کو چھوڑ کے انہی کو اپنا خدا ماننے لگتے، روٹی ہی ان کی خدا ہوتی اور کپڑا ہی، یا مثلا وہ چیز ہے جن سے کپڑا بنتا ہے، یہ ان کا جو ہے
خدا کے لیے سجدہ نہ ہوتا، خود ان چیزوں کے لیے
خدا شمار ہونے لگتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ کم سے کم نماز میں انسان کی توجہ مادیات سے ہٹائی جائے اور اس کے سر کو خاک پہ جھکایا جائے۔
اللہ اکبر۔
لہٰذا ہماری فقہ کے لحاظ سے اس چیز پر جو لباس میں شمار ہوتی ہے یا اس کا شمار جو ہے کھانے پینے میں ہوتا ہے یا معدنیات میں ہوتا ہے، سجدہ جائز نہیں ہے۔ البتہ صرف مٹی پہ سجدہ یہ واجب نہیں ہے،
لیکن افضل ہے،
افضل ہے، افضل السجود علی التراب، اللہ کے پیغمبر کی یہ سنت والجماعت کے یہاں بھی حدیث ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، آپ نے فرمایا بہترین سجدہ جو ہے مٹی کے اوپر سجدہ ہے، اور یہاں سے انسان کی خاکساری جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، تواضع انسان کا وہ ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہم کاٹ پیٹ ہی پہ سجدہ کریں گے، کپڑے ہی پر سجدہ کریں گے، اگر ہم نے مثلا اس کے علاوہ سجدہ کیا تو یہ بہتر بات نہیں ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی فقہ کا پابند ہے۔ اگر کوئی انسان شیعہ فقہ کو مانتا ہے تو شیعہ فقہ میں یہ ہے۔ البتہ ایک چیز اور عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں جو ہے اگر تقیہ انسان کیے ہوئے، یعنی انسان کی جان کا خوف ہے، مال کا خوف ہے، اور اتنا خوف ہے مال جانے کا کہ انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا، انسان کی آبرو کو خطرہ ہے، تو اس صورت میں ہماری فقہ میں اجازت دے دی گئی ہے کہ انسان جو ہے مجبوری کی حالت میں بحالت تقیہ کارپیٹ پہ سجدہ کر سکتا ہے، اور حتیٰ دوسروں کی جماعت میں شرکت بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حالت اختیار میں اگر ہم چاہیں ہر روز ایسے ہی کریں کہ کسی مسجد میں گھس کے کارپیٹ پہ سجدہ کریں، تو یہ ناجائز ہے، آپ کی نماز باطل شمار ہوگی، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا ہوگا۔
جی بالکل۔
میں نے ایک چیز کہی تھی کہ دوسرے مذہب میں بھی لازم نہیں ہے کہ کارپیٹ ہی پہ انسان سجدہ کرے، ان کے یہاں بھی یہ روایتیں موجود ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حصیر کے اوپر سجدہ کرتے تھے، ایک چٹائی کا ٹکڑا تھا،
بوریا
اس پر سجدہ کرتے تھے۔ یہ چیز ہے۔
بہت شکریہ حضور۔ اس کے بعد جو ریکارڈڈ سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔
لیکن حضور، مسجد میں بچھی ہوئی کارپیٹ یا جو چیز ہوتی ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے، وہ تو کسی اور استعمال میں آتی نہیں ہے، صرف اور صرف مسجد کے ہی استعمال میں ہوتی ہے، اس کا کوئی انسانی استعمال اس کے علاوہ نہیں ہے، بدلی جائے گی تو پھر دوسری لگے گی، اور وہ کارپیٹ یا وہ چیزیں جو ہے پھر کہیں نہ کہیں مدفون کر دی جاتی ہیں، اس کا انسان تو استعمال کرتا نہیں ہے۔ کاغذ پہ اگر ہم سجدہ کرتے ہیں تو پھر اس کاغذ کا احترام ہم کیسے کریں؟ اسے اٹھا کر کے، جس پہ ہم نے سجدہ کیا ہے اسے اٹھا کر کے تو پھر ہمیں کوڑے خانے میں یا کہیں ڈسٹ بن میں پھینک دینا ہوگا۔ اور ایسی صورتحال میں جیسے سنی کی مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے، تو وہاں فرق ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اہل تشیع ہے۔ تو ایسے حالات میں کیا کوئی ہے راستہ، कि उस कारपेट पे सजदा किया जा सके, ताकि जैसे तकिया, मेरा मकसद ये है पूछने का।
सही, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी हुजूर। और मैं गुजारिश करूंगा आपसे भी बहुत मुख्तसर तौर पे, चूंकि सवालात यहाँ भी बहुत हैं और
जी
दूसरे
जी
भी जो सवालात आ रहे हैं वो भी माशाल्लाह उनकी तादाद भी बहुत है।
जी मैंने अर्ज़ किया, देखिए कि तकिये की हालत में इंसान जो है कारपेट पे सजदा कर सकता है
जी,
और दूसरों की जमात में भी शिरकत कर सकता है, इसमें कोई
लेकिन
हर्ज
हुजूर तकिया खाली ये तो नहीं है कि हम उन्हें पता चल जाएगा कि ये दूसरे मजहब से या दूसरे
ना।
मसलक से
मैंने
ताल्लुक रखता
मौरिद
है,
बताया तकिये का,
जहां पे इज्जत आबरू
हाँ,
जान माल का
जान माल
खतरा
का
हो
खतरा हो
जी
वहाँ, या कभी ऐसा है कि हमारे फुकाहे कराम ने इजाजत दी है,
जी
अगर आपका उनकी जमात में शिरकत करना इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का सबब है,
जी
तो इस सूरत में भी आप उनके साथ जमात में शिरकत कर सकते हैं,
सही
और जब जमात में शिरकत कर सकते हैं तो कारपेट पर सजदा कर सकते हैं।
जी
लेकिन हालत अख्तियार में आपने अभी एक चीज कही कि मसलन हमने कागज पर सजदा कर
तो
लिया,
उसका फिर एहतराम नहीं हो पाएगा।
हाँ, किसने कहा है कि आप कागज का एहतराम कीजिए?
जी
हम अल्लाह का सजदा कर रहे हैं, ना कि कागज का सजदा कर रहे हैं,
सही
ना कि कारपेट का सजदा कर रहे हैं,
जी
फर्क है।
जी
कभी हम कारपेट को सजदा कर रहे हैं, कागज
सही
को सजदा कर रहे हैं, ला हौला वला कुव्वत, ये शिर्क है।
सही
हम अल्लाह का सजदा एक चीज पे कर रहे हैं,
जी
खूब, अगर कारपेट पे भी आप सजदा कर रहे हैं, क्या कारपेट पे कोई दूसरा इंसान जहां आप सजदा कर रहे हैं पैर नहीं रखता है?
बिल्कुल
ये
रखता है
बेहतरामी का सबब नहीं बनता।
जी
तो जरूरी नहीं है कि आप जिस चीज पे सजदा कर रहे हैं उसका आप एहतराम कीजिए,
सही
सिर्फ बेहतरामी ना कीजिए, इतना ही काफी है।
जी बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया हुजूर। और सवाल देखिए हुजूर, अभी आपने एक सवाल जो कहा, इस्तेमाल किया था लफ्ज़ कि एक खातून और मर्द अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो 10 हाथ का फर्क होना चाहिए,
जी जी
तो अभी पाकिस्तान से सवाल पूछा गया है कि 10 हाथ से मुराद क्या है यहाँ पे?
10 हाथ से ही, यानी कोहनी की जगह से लेकर
जी
इंसान की जो बीच की उंगली सबसे बड़ी है
जी
यहां तक, ये एक
सही
हाथ कहलाता है,
सही
मुतवस्सित इंसान का हाथ।
जी
कभी हो सकता है एक आदमी का हाथ 10 हाथ
जी
के बराबर हो,
बिल्कुल
वो
बिल्कुल,
मेलाक नहीं है,
ना बहुत लंबा ना बहुत
हाँ,
छोटा।
या एक आदमी का हाथ बस एक बालिश तक का
जी
हो, ऐसा
बोलिए
नहीं, दरमियानी हाथ जो होता है।
हुजूर, एक सवाल अभी किया गया है, पूछा गया है कि मैं अगय सिस्तानी का हफजुल्ला, मैं उनका मुकल्लिद हूँ, मेरा सवाल यह है कि क्या वाजिब गुस्ल या मुस्तहब गुस्ल, मसलन गुस्ल ईद है, क्या
जी
मैं वो गुस्ल करने के बाद बगैर वुजू किए नमाज अदा कर सकता हूँ?
देखिए, इस सिलसिले में आयतुल्लाह अल-उज़्मा आगे सिस्तानी फरमाते हैं
जी
कि गुस्ले जनाबत में
जी
असलन वुजू करना हराम है,
सही
नाजायज है, बिदअत है।
जी गुस्ल के बाद
जी गुस्ले जनाबत के अलावा जो दूसरे वाजिब गुस्ल हैं
जी
जो औरतें करती हैं
जी
उसके अंदर भी वुजू की जरूरत नहीं है।
सही
इसी तरीके से वो अगसाल, वो गुस्ल जो मुस्तहब हैं,
जी
मसलन गुस्ले जुमा है, गुस्ले ईदैन है,
जी
गुस्ले गदीर है,
सही
इन अगसाल में भी वुजू की जरूरत नहीं है।
सही,
अलबत्ता वुजू इंसान कर ले बिनाबर एहतियात मुस्तहब तो बेहतर है।
लेकिन नमाज उसकी सही है अगर बगैर वुजू किए
जी
भी नमाज पढ़ना
एहतियात
चाहे?
मुस्तहब वुजू करना
बिल्कुल
है,
सही
ना करे तब भी कोई हर्ज
जी,
नहीं
बिल्कुल।
है।
हुजूर, एक सवाल किया गया है हिंदुस्तान से, और अगर अपना नाम लिखते तो बेहतर होता, उनके नाम के साथ नशर किया जाता। उन्होंने सवाल किया है कि मैंने नज़र की थी कि 21 माह मुबारक रमज़ान और 8 ज़िलहिज और 9 मुहर्रम को मैं नज़र करूँ, यानी
जी
कुछ अफराद को खाना खिलाऊं, दावत दूं कुछ मोमिनीन को, और अब मैं ये चाहता हूं कि मसलन इस नज़र का 40% हिस्सा
जी
वो किसी मस्जिद की तामीर में लगाऊं, तो
सही
क्या
है,
ये मुमकिन है, मेरे लिए जायज़ है, मैं उस नज़र का 40% हिस्सा उसकी तामीर में लगा सकता हूँ?
देखिए मैं इस सिलसिले में अर्ज करूं कि ये इंसान की नियत के ऊपर है।
जी
जब उसने नज़र किया था
जी
उस वक्त अगर उसने रकम को मुअय्यन किया था, अफराद को मुअय्यन किया था,
जी
तो उसमें कमी नहीं हो सकती।
सही
मसलन एक इंसान ने नज़र किया कि मैं 1 लाख रुपए में
जी
इन 3 दिनों में मोमिनीन की ज़ियाफ़त करूंगा,
सही
नज़र मुनाकिद हो गई,
जी
इस 1 लाख रुपए में 1 रुपए भी कम नहीं कर सकता,
नहीं कर सकते काम
नहीं कर सकता,
जी, यानी मस्जिद में भी नहीं दे सकते
कहीं
वो,
नहीं दे सकता।
सही
ये 1 लाख रुपए
जी
जो नज़र किया, चूंकि नज़र मुअय्यन है पैसे के साथ,
जी
या मसलन उसने नज़र किया कि मैं 10 आदमियों को खाना खिलाऊंगा,
जी
खूब, इसमें भी 9 आदमी को नहीं कर सकता, 1 आदमी को कम नहीं कर सकता।
सही
लेकिन आम तरीके से इंसान नज़र जो है बतौर मुतलक करता है
जी
कि मसलन हम जो है 21 माह रमज़ान को मोमिनीन का इफ्तार करेंगे,
जी
खूब, उसने देखा कि हमारा इफ्तार में 2 लाख रुपए खर्च होता है,
जी
तो इस सूरत में अगर चाहता है किसी मस्जिद में मदद करना चाहता है,
जी
मसलन वो इफ्तार में जो है हर मरतबा मुर्ग और बकरा देता था,
जी
आपकी इफ्तार में कमी कर दे, थोड़ा हल्का माल कर दे,
सही,
वो पैसा उठा के मस्जिद में दे सकता है।
जी
चूंकि इसने सिर्फ ये नजर की है कि मैं इफ्तार दूंगा, मैं मोमिनों को खाना खिलाऊंगा,
कितना मसला,
कितने पैसे में करूंगा, ये नहीं किया।
बहुत शुक्रिया हुजूर, इजाजत दीजिए जो रिकॉर्डेड सवाल आते हैं उनकी तरफ से।
खिदमत में हाजिर।
जी बिस्मिल्लाह।
अस्सलामु अलैकुम। जी भाई, मैं अबू जबी से तज़ीम फातिमा बात कर रही हूँ। मुझे अलामा की खिदमत में ये सवाल अर्ज करना है कि क्या किसी छोटे बच्चे को हदीस पढ़ने के लिए उसके सर पर इमामा और अबा उसको पहनाई जा सकती है? मेहरबानी फरमा कर इसका जवाब
जी
अता कीजिए।
बहुत शुक्रिया सवाल।
शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
जी हुजूर।
जी मैं इस सिलसिले में अर्ज करूँ कि देखिए, अगर कोई छोटा बच्चा है
जी,
या तालिब इल्म नहीं है
जी,
सिर्फ खतीब है, मजलिस पढ़ रहा है
जी,
तो वो सिर्फ अबा और टोपी में मजलिस पढ़े, खिताबत करें
जी।
चूंकि ये अमामा इस ज़माने में उलमा की निशानी बन चुका है,
सही,
अगर वो बच्चा अमामा लगा के मजलिस पढ़ेगा तो लोगों को धोखा हो जाएगा कि ये आलिम दीन है, ये तालिब इल्म है
जी,
इसका इल्मी स्टैंडर्ड इतना है
जी,
लिहाजा इस सूरत में नाजायज़ हो जाएगा। चूंकि ये शियार निशानी और अलामत या अमामा बन चुका है,
पहचान बन चुका है
अहले इल्म की
जी।
इसी सिलसिले में आयतुल्लाह खामनाई दामत बरकातो रहबर इनकलाब इस्लामी आपके दफ्तर से एक दिन गुफ्तगू हो रही थी, मैंने बताया उनसे
सही
कि हमारे यहाँ इस तरीके से बाज़ लोग करते हैं कि बच्चों के सर पे अमामा रख देते हैं और मजलिस पढ़वाते हैं,
सही,
तो उन्होंने कहा अगर अमामे की बेहुरमती का सबब है तो नाजायज़ और हराम है
जी।
अब देखिए, खुद जो है कभी कमरे में बैठे हुए शौक के तौर पर बच्चे के सर पे हमने अमामा रख दिया, कोई हर्ज नहीं है
जी, जी।
अमामे में फोटो खिंचवा लिया, कोई बात नहीं है, यहाँ हद की हुरमत नहीं है, बेहतरामी नहीं है,
सही,
लेकिन अमामा रख के बच्चे को हमने मिंबर पे बिठला दिया
जी,
हजारों इंसान उसकी बात को सुन रहे हैं, चाहे अपने भी हैं गैर भी हैं, तो यहाँ चूंकि अमामे की बेहतरामी शुमार होगी, लिहाजा इस उनवान से नाजायज है।
सही, बहुत शुक्रिया हुजूर। इसके बाद एक रिकॉर्डेड सवाल और लेते हैं।
खिदमत में हाजिर।
जी बिस्मिल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है, गुस्ल जनाबत करते हुए नियत को जबान पर जारी करना जरूरी है या दिल में हो तो काफी है?
जी जी,
मैं इस सिलसिले में अर्ज करूं कि देखिए, नियत के माना है कस्द, नियत के माना है इरादा, यही इंसान के जहन में चीज हो,
सही,
कि मैं गुस्ल जनाबत करता हूँ कुर्बतन इल्लाह, काफी है,
सही,
इस नियत को जबान पे लाना शायद सही भी ना हो,
सही,
बाज़ उलमा ने इश्काल भी किया है, अलबत्ता अगर इंसान जबान पे ले आए तो बातिल नहीं होगी ये नियत उसकी, लेकिन नियत का तरीका यह है कि इंसान के जहन में ये चीज हो, अगर इंसान दिल से गुजार ले तो और अच्छा है
जी,
कि मसलन मैं इस फेल को अंजाम दे रहा हूँ खुदा के लिए, या मसलन गुस्ल जनाबत करता हूँ या करती हूँ कुर्बतन इल्लाह
जी,
लेकिन जरूरी नहीं है कि इंसान जो है
जबान से कहे,
जबान से अदा करे
जी। बिल्कुल हुजूर, अभी एक सवाल आया है कश्मीर से, उन्होंने सवाल किया है कि अगर शोहर और बीवी एक ही जगह पर नमाज पढ़ रहे हों तो उनके दरमियान कितना फासला होना चाहिए और किस तरीके से फासला होना चाहिए?
देखिए, कभी ऐसा होता है कि शोहर आगे है
जी
और उसकी जौजा पीछे नमाज पढ़ रही है
जी,
कोई हर्ज नहीं है,
कोई हर्ज नहीं है जी।
मर्द के पैर की जगह
जी
और औरत के सजदे की जगह
जी,
इस तरीके से है, कोई हर्ज नहीं है। अब ये औरत आगे चली गई,
सही,
औरत के पैर की जगह और मर्द के सजदे की जगह
जी,
ये जो है अगर आ गया तो इस सूरत में जो रहबरे इनकलाब इस्लामी के मुकल्लिद हैं वो फरमाते हैं, अगर औरत आगे है और मर्द पीछे है तो इस सूरत में एक बालिश्त का फासला अगर है तो दोनों की नमाज सही है।
सही।
एक मसले की तरफ और तवज्जो कराऊं, मसलन इन दोनों में से औरत और मर्द दोनों में से जो पहले नमाज पढ़ रहा है, मसलन औरत जो है नमाज पढ़ रही थी, मर्द आया उसके पीछे नमाज पढ़ने लगा
जी,
वो फासले की रियायत नहीं की, तो इस सूरत में औरत की नमाज सही होगी और जिसने बाद में नमाज शुरू की है उसकी नमाज बातिल शुमार होगी। ये बातिल उस सूरत में आए दोनों की जब दोनों तकबीरतुल अहराम एक साथ कहें,
सही,
लेकिन अगर कब्ल व बाद है
जी
तो जिसने पहले शुरू किया नमाज को
उसकी
उसकी
नमाज
नमाज सही
सही है,
होगी,
बाद वाले की नमाज
बाद
बातिल है।
वाले की नमाज बातिल
जी
होगी।
बिल्कुल हुजूर, एक सवाल किया गया है कि क्या कोई खातून अपने फैमिली के कब्रिस्तान पर फातिहा पढ़ने के लिए जा सकती है, जो उनका खानदानी कब्रिस्तान है
जी,
उसमें फातिहा पढ़ने के लिए जा सकती है?
खुद देखिए फातिहा पढ़ने के लिए निकलना औरतों का, इससे मना नहीं किया गया
जी,
फी नफ्स ही इस काम में इश्काल नहीं है,
सही।
लेकिन कभी ऐसा होता है इसके ऊपर मफसदा मुतरतिब हो रहा है तो उस सूरत में हो सकता है नाजायज हो,
सही
लेकिन खुद फातिहे के लिए निकलना और पढ़ना फातिहा
जी,
मुजिबे सवाब है और इसका अजर सिर्फ मर्दों से मखसूस नहीं है।
सही बिल्कुल। हुजूर सवाल किया है नदीम बुखारी साहब ने उम्मान मस्कत से, वो पूछ रहे हैं कि मैं मस्कत की एक कंपनी में काम करता हूं और मेरे साथ कमरे में दो गैर मुस्लिम अफराद भी रहते हैं, तो क्या मैं ऐसे रूम में नमाज अदा कर सकता हूं जहां पर वो भी मौजूद हैं?
देखिए कोई हर्ज नहीं है
जी
कि ऐसी जगह जहाँ गैर मुस्लिम अफराद हैं
जी,
या इंसान रह रहा है
सही
ऐसी जगह पे नमाज पढ़ने में कोई
जी
हर्ज नहीं है
जी
और आपकी नमाज भी सही होगी, बातिल शुमार नहीं होगी।
सही बिल्कुल। हुजूर एक सवाल किया गया है कि मैंने एक मकान अपने घर वालों के रहने के लिए खरीदा है, क्या उस पर भी खुम्स वाजिब है?
अगर आपने इस मकान को साल भर के जो अखराजात हैं
जी
उससे खरीदा है, मतलब साल भर की जो दरामद आपकी थी, मतलब
जी
10 लाख रुपए दरामद हुई,
जो इनकम थी आपकी
इनकम थी,
जी
आपने 5 लाख का मकान खरीद लिया
सही
तो इसके ऊपर खुम्स नहीं है।
जी
लेकिन अगर बचत से जो है मकान खरीदा है तो इस सूरत में जो है खुम्स वाजिब हो जाएगा।
जी
यह नुक्ता यह है कि
जी
आपने उस मकान को किस पैसे से खरीदा है,
सही बिल्कुल। अगर उसका खुम्स निकल चुका था तो वाजिब नहीं है,
वाजिब नहीं है।
और अगर खुम्स
खुम्स
नहीं निकला
निकल चुका था एक
जी
नंबर, दो कि जो साल की दरामद थी नए साल की
जी
उस दरामद से आपने अपने लिए मकान खरीदा है
जी
वो इसके ऊपर भी खुम्स नहीं है। जो पैसा जो आ रहा है आपकी जेब में
सही,
इसके ऊपर खुम्स कब वाजिब होगा?
जब पूरा साल हो
जब
जाएगा।
पूरा साल गुजर जाए।
हुजूर अभी एक सवाल आया है कुर्बानी के हवाले से, देखते हैं वो सवाल क्या है। जी बिस्मिल्लाह।
अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम सलाम।
जी मेरा सवाल ये है कि हमने अभी परसों जो ईद कुर्बान, और इसके लिए हमने एक बेड लाया था, और बेड ऐसे ही जो हमने उसको बाग में रखा था, तो लेकिन अचानक हमने देखा कि वो लंगड़ा के चल रहा था।
जी जी बिल्कुल, यानी उसमें कोई नक्स था। मैं
जी
गुजारिश
जी
करूं आपसे कि बहुत
हमने
मुख्तसर
देखा
वक्त
कि वो
में।
लंगड़ा के चल रहा था, एक टांग ऊपर रख के चल रहा था, तो
क्या उसकी कुर्बानी सही है? मैं समझता हूँ यही सवाल है।
जी जी देखिए मैं खुलासे के तौर पे अर्ज करूँ
जी
कि नाकिस जानवरों की कुर्बानी जो है इससे शरीयत में मना किया गया है।
सही
अगर उसका पैर टूटा हुआ है कटा हुआ है
जी
तो उस पर कुर्बानी नहीं हो सकती है।
सही बिल्कुल
लेकिन कभी ऐसा है कि वक्ती तौर पे जो बैठ गया वो
जी
और जब उठा तो वक्ती तौर पे ये परेशानी हो गई
जी
और आप जानते हैं कि 1-2 घंटे में ये चीज़ सही हो जाएगी तो कोई
जी
हर्ज नहीं है, उसका शुमार नुक्स में नहीं होगा।
जी बिल्कुल
क्योंकि जिस चीज़ से मना किया गया है वो ये है
जी
कि नाकिस जानवर की कुर्बानी न की जाए।
सही
वक्ती तौर पर अगर कोई हैवान गिर गया और लंगड़ा के चलने लगा
जी।
तो ये नुक्स शुमार नहीं होगा।
हुजूर अगर उसकी टांग चोट लग के मसलन टूट गई या जख्मी हो गई, तो ये तो
हाँ
नक्स नहीं है?
जी नहीं है, मान लीजिए नक्स शुमार होगा क्योंकि अगर टांग कट जाए
जी
या टूट जाए काबिले इस्तेमाल ना हो
जी
जब तक वो चीज़ ठीक ना हो जाए,
सही
अगर वो ठीक हो जाएगा
जी
तो सही व सालिम शुमार होगा
सही
और जब तक वो सही व सालिम शुमार नहीं होगा
जी
उस पर कुर्बानी मुश्किल हो जाएगी।
जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हुजूर, आपके शुक्रगुजार हैं। यहीं पर आपसे हम खुदाफ़ज़ी करेंगे चूंकि हमारा वक्त इख्तिताम को पहुंचा, और एक मरतबा और आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं, आपसे खुदाफ़ज़ी करते हैं।
खुदा हाफिज़। इल्तिमास
नाज़रीन आपकी खिदमत में भी एक मरतबा फिर हम मुबारकबाद पेश करते हैं ईद कुर्बान की, और आपसे दुआओं की इल्तिमास है। खुदावंद आलम कल जो आपकी इबादतें हैं और आज भी जो इबादतें हैं, चूँकि आज रोज़े अरफा था, बड़ी अहम तारीख थी, उनको कबूल फरमाए, और कल की जो अहम इबादतें हैं आप सब जानते हैं, उनमें बड़ी अहम चीज़ है सिले रहम, उसको करना मत भूलिएगा इंशाल्लाह, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम भी इंशाल्लाह आपको दुआओं में याद रखेंगे। और जो भी सवालात हों किसी भी सिलसिले से हों तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए, इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे और वो सबब बनेंगे कि पूरी दुनिया तक इस्लामी तालीमात पहुँच सकें। फ़िलहाल आपको खुदा की पनाह में देते हैं, हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।